श्रीमद् भागवतम के नवे स्कंध के छठवें अध्याय का, जिसका शीर्षक है सबरी मुनि का पतन। श्लोक संख्या 26 पढ़ेंगे। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषयोस्य कृपालव इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिं ते सुषमाहिता। भार्या सतेन निर्विण्णा ऋषयो कृपालवः। इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ऐन्द्रिं ते सुषमाहिता। भार्या सतेन निर्विण ऋषयोस्य कृपालवः। इष्टिं स्म वर्तयाम चक्रु ते सुसमाहिता। भार्या सतेन एक सौ पत्नियों के साथ निर्विण्ण अत्यंत खिन्न ऋषय ऋषिगण अस्य उस पर कृपालव अत्यंत कृपालु इष्टिम एक अनुष्ठान स्म भूतकाल में वर्तयाम चक्रु संपन्न करने लगा। ऐन्द्रिम इंद्रियज्ञ ते वे सभी सुसमाहिता अत्यंत सावधान। अन्वा तात्पर्य प्रपाद के प्रपाद किया। अनुवाद। यद्यपि जुवनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल में चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थीं, तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतएव वे मनोयोग पूर्वक इंद्रियज्ञ करने लगे, जिससे राजा के लिए पुत्र उत्पन्न हो सके। तात्पर्य, यदि कोई चाहे तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश हो सकता है, किंतु वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है गृहस्थ जीवन से पूर्ण विरक्ति। यद्यपि जुवनाश्व गृहस्थ जीवन से विरक्त हो चुका था, किंतु वे और उसकी पत्नियां कोई संतान न होने के कारण सदा खिन्न रहती थी। श्रीमद्भागवत की श्लोक के ऊपर चर्चा करने के सर्वथा अयोग्य हूँ मैं यहाँ पर उपस्थित। जितने समस्त भक्त हैं उनमें सबसे ज़्यादा योग्य मुझे लगता है मैं ही हूँ। फिर भी भक्तों ने मुझे मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए सेवा प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ। तो ये जो श्लोक है, ये इस अध्याय का नाम है सबरी मुनि का पतन। वैसे तो सूर्यवंश के वंशजों का वर्णन चल रहा है, चंद्रवंश और सूर्यवंश। ये नवम स्कंद है, दसम स्कंद में फिर चंद्रवंश का वर्णन शुरू होगा, प्रारंभ होगा। लेकिन उससे पहले सूर्यवंश का विस्तार से वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। तो इस वंश में इतने सारे महान पराक्रमी भगवत भक्त राजा हुए हैं, उनके गुणों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। इस वंश के जो राजा हुए उनके महान गुण, अद्भुत पराक्रम, बल, ऐश्वर्य, भक्ति, तपस्या और उनके दिव्य गुणों के द्वारा समस्त वैदिक साहित्य उनका गुणगान करते हैं। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए, इस कथा को हम सब जानते हैं। वही महान सूर्यवंश, उसी का वर्णन है और इसी में आगे बताया जाएगा, और भी राजाओं का वर्णन किया जाएगा। तो ये जो श्लोक है इसमें जीवनाश्व राजा के विषय में चर्चा हुआ है, राजा जीवनाश्व। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषयस्य कृपाल व इष्टिम स्म वर्तया चक्रु ऐन्द्रिम तसुषमाहिता। यद्यपि जीवनाश्व अपनी 100 पत्नियों सहित जंगल चला गया, किंतु वे सभी अत्यंत खिन्न थीं, तथापि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतः वे मनोयोग पूर्वक इंद्र यज्ञ करने लगे जिससे राजा का पुत्र उत्पन्न हो सके। तो राजा जीवनाश्व जो है वो, उनके पिछले श्लोक में भी उनका वर्णन हुआ है, सेनजीत के पुत्र जीवनाश्व हुए, और जीवनाश्व जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चले गए। तो ये उनके गृहस्थ जीवन त्यागने का इंस्पिरेशन था। तो कई प्रकार से व्यक्ति इंस्पिरेशन ले सकता है, जो भी कारण हो, वैराग्य हमेशा उत्तम ही माना जाता है। भगवान गीता में बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाश्व कृत्न अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। तो राजा जीवनाश्व जो है वो पहली कैटेगरी में, आर्त, आर्त का अर्थ है दुखी, दुखी हैं। दुख इस बात का है कि उनका कोई संतान नहीं है, 100 पत्नी होने के बावजूद भी उनकी संतान नहीं है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि गृहस्थ जीवन में संतान ना हो ये बहुत बड़ा दुख है। गृहस्थ जीवन में संतान को प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही दृढ़ होती है, बहुत बलवती इच्छा होती है जो भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करता है। और अगर ये इच्छा पूर्ण ना हो तो गृहस्थ जीवन जो है वो दुखमय माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे राजा जीवनाश जो हैं दुखी हैं, केवल गृहस्थ जीवन के साथ साथ वो राजा भी हैं, और राजा का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि उसको संतान हो जो आगे राज्य को बढ़ाए। तो ये भी एक प्रेरणा है, ये दुख कई बार व्यक्ति को इंस्पायर करता है, उत्प्रेरित करता है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। कैसे दुख जो है वो इसे लोग कई बार दुख से घृणा करते हैं, दुख क्यों मिलता है हमें। सनातन गोस्वामी ने चेतन महापुरुष से पूछा कि के आमी के ने अमार जारे ताप करवाया, मैं कौन हूँ, मुझे तीन प्रकार के ताप क्यों जलाते हैं, ये मैं नहीं जानता। तो तीन प्रकार के ताप जो हैं वो हर जीवात्मा को जलाते हैं। तो उसी जीवात्मा को कष्ट देने के लिए ही दुख का व्यवस्था भगवान के द्वारा किया जाता है। जय श्री राधा राधिका रमण जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, गौर निताय की जय। तो दुख जो है वो ये भगवान की व्यवस्था है, और भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। उसी के बिहाव पे प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी हमेशा लिखते थे योर एवर वेल विशर, चाहे मैं तुम्हें डांटूं, चाहे तुम्हें पीटूं, चाहे तुम्हें पुरस्कार दूं, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, शुभ चिंतक। उसी तरह से भगवान हमारे वेल विशर हैं, और वेल विशर जो है हमें कष्ट भी देता है। तो उसी तरह से कष्ट क्यों, भगवान जो हमें सुख भी देते हैं, वो सुख की भी व्यवस्था है इस संसार में, सुख की भी व्यवस्था है और दुख की भी व्यवस्था है। माम उपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम, कि मैंने इस संसार को बनाया है, इस प्रकार से इसका डिजाइन किया है कि इस संसार में दुख होगा, दुख मिलेगा जीवों को, अशाश्वत है ये संसार, बाई डिफॉल्ट सेटिंग है इस संसार का। हम लोग उसको कस्टमाइज करने का प्रयास करते हैं ना, लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग यही है कि ये दुख है संसार में। तो दुख क्यों है, भगवान दुख क्यों देते हैं, इसलिए कई बार इस संसार में किसी को दुख हो जाता है तो बड़ा बेचारा परेशान हो जाता है, मैं दुखी कैसे हो गया। अगर इस संसार में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तब है जब व्यक्ति सुखी है। ये सुखी कैसे है इस संसार में, आश्चर्य की बात है, क्योंकि संसार तो दुखालय बना है। भगवान ही सोचते कि संसार तो मैंने दुखालय बनाया, ये सुखी कैसे हो गया है? कई बार लोग भगवान के पास आते हैं और सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, उसके बाद जय जगदीश हरे, कि सुख और संपत्ति आए घर। तो भगवान सोचते कैसे आएगा घर तुम्हारी सुख संपत्ति, क्योंकि संसार को मैंने दुखालय बनाया, तो तुमको सुख संपत्ति कैसे दूं। तो भगवान जो है वो लोग उनसे मांगते हैं सुख। तो दुख जो है भगवान ने क्यों बनाया, इस पर बहुत सोचने वाली बात है। और दुख अगर हमें मिलता है तो उस पर हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति पानी में घुस गया, बोला ठंड लग रहा है, बहुत आश्चर्य की बात है, आश्चर्य है ये, तो ये क्या हो, पानी में ठंड क्यों लग रहा है, पानी का स्वभाव क्या है। पानी अगर गर्म लग रहा है तो आश्चर्य की बात है, कुछ लगाया क्या, हीटर लगाया क्या आपने, है कि नहीं। पानी का स्वभाव क्या है, शीतलता। उसी तरह से इस संसार का स्वभाव है दुखालय, इसलिए संसार में अगर सुख मिलता है किसी को तो सावधान रहिए, सावधानी की विचार करने वाली बात है ना। कई बार भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रभु जी वो तो भक्ति नहीं, जो भक्ति नहीं करता वही आगे बढ़ता है संसार में, हम तो यही देखते हैं है ना। भक्ति नहीं कर रहा आगे इतना ऊपर उठ गया, वो बहुत पैसा कमा लिया, इससे भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये सब भगवान की व्यवस्था है, चाहे कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, सबका उद्देश्य एक ही है, दुख देना है। कैसे, जैसे हम लोग सब पहले दो लोगों में झगड़ा हुआ था, हमने देखा झगड़ा होता था कभी, एक बोलता था कि तुमको उठा कर पटक दूंगा, तो पटकने के लिए पहले उठाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। बिना उठाए अगर पटकेंगे तो ज्यादा चोट नहीं लगेगा, इसलिए इतना ज्यादा ऊंचा उठाएंगे और उसके बाद पटकेंगे मतलब उतना ज्यादा चोट लगेगा। तो जब माया एक जीव को ऊपर उठाती है भौतिक दृष्टि से, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पटकना। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए माया के ट्रिक्स को जो समझ लेगा वो चाहे ऊपर ऊपर जितना उठेगा उतना उसको क्या होता है, भय होगा। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होता है, आप सीढ़ी पे चढ़िए, सीढ़ी पे चढ़ते चले जाइए, ऊपर चढ़ते ये 20वीं मंजिल पे जाके नीचे झांकिए क्या होगा, भय बढ़ता जाता है। इसलिए आप देखिए कि जो भी व्यक्ति इस संसार में भौतिक दृष्टि से ऊपर उठते जाता है उतना ज्यादा भयभीत होता है। कई बार तो ऊपर उठ ख्याल से कि गिरूंगा उसी से हार्ट अटैक हो जाता है लोगों का। मैं हल्का सा देखिए, अब देखो फेंकने वाली हूं मैं तुम्हें, पटकूंगी अब तैयार रहो, इस ख्याल से ही अब पटकेंगे तो क्या होगा, नीचे गिरेंगे, उसी हवा में ही मर जाते हैं लोग। अगर आप 10वीं मंजिल से किसी को फेंकिए, और बताया जाता है कि ऐसा कि व्यक्ति रास्ते में मर जाता है, जमीन पे जो गिरता है तो मृत शरीर गिरता है क्योंकि हार्ट अटैक हो जाता है इस बात से। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो इससे मोहित नहीं होते, ऊपर चढ़े नीचे उतरे उनके लिए कोई अंतर नहीं है। तो किसी को अगर सुख मिल रहा है इस संसार में तो उसको उसके दुख का ही एक अंग है, पार्ट है वो सुख देना। सुख जो मिलता है वो भी उसके दुख का ही एक प्रोसेस के अंदर आता है, दुख देने के प्रोसेस के अंदर ही सुख भी है। जैसे कि एक मछली होती है ना, मछली को जब पकड़ता है कोई फिशरमैन तो पहले उसको क्या दिखाता है, उसके कांटा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा चारा लगा देता है, इंग्लिश में कहते हैं बेट, बेट, और चारा पानी में डाल देता है, उसको कांटे को फेंक देता है। मछली मछली क्या करती है, उसको देखते ही बड़ा खुश हो जाती है, अरे आज तो फ्री में इतना चारा है, आज ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, एक साथ इतना मिल गया। और उस चारे को खाने के लिए जाती है ना। चारा खिलाने का व्यवस्था किसने किया, मछुआरे ने किया, भगवान ने थोड़ी किया, भगवान ने तो मछली को जल में दिया, उसको खाने का अलग व्यवस्था किया है कि नहीं। ये मछुआरे ने किया है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, उसको खिलाना या उसको पकड़ना, पकड़ना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आर के नो माया जाले पड़ीते छो जीव मीना, नहीं जानो बाधा होए रोवे तुमी चिरा दीना, अति तुच्छ भोग से बंदी होए माया फसे, रहिले विकृत भावे दंड जथा पराधीना। अति तुच्छ भोग आसे, अति तुच्छ भोग, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, थोड़ा काफी है फंसाने के लिए, थोड़ा काफी है मछली को फंसाने के लिए। 50 केजी मांस नहीं चाहिए, चारा नहीं चाहिए, कितना चाहिए चारा, थोड़ा में ही काम हो जाता है कि नहीं। अति तुच्छ भोग आसे, उसी थोड़े से चारे के लिए वो फंस जाती है। उसी तरह से थर्ड क्लास का प्लेजर इस संसार में है, थर्ड क्लास का, बहुत हाई क्वालिटी का नहीं, लेकिन उतना काफी है हमें फंसाने के लिए, है कि नहीं। सारा संसार उसमें फंस जाता है, बंदी बंदी होए माया पास है, ये पास है माया का, जिसमें मछली को बंदी बनाती है माया। और मछली कौन है, जीव, पड़ी तेछो जीव मीन, मीन मतलब मछली, जीव ही वो मछली है। और अति तुच्छ भोग जो है इस संसार के, वो क्या है, पास है, माया का पास है, वो सुख माया का पास है। तो जब शिकारी आपको चारा की व्यवस्था करे तो क्या करना चाहिए, मछली की आंख होती है ना, है कि नहीं। लेकिन मछली उसी तरह हम सब का भी आंख है कि नहीं, मछली की आंख होती है, लेकिन उस आंख से वो चारा को देख सकती है, लेकिन चारा के अंदर छुपे हुए कांटे को नहीं देख सकती। उसी तरह से हम सब की आंख है, लेकिन ये आंख हमें संसार के सुखों का दर्शन कराती है, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए जो दुख हैं वो इन आंखों से नहीं देख सकते। ये आंखें हैं हमें विमोहित कर देती हैं, उस दुख को कैसे देख सकते हैं, शास्त्र की आंखों से, गुरु की आंखों से। इसलिए शास्त्र चक्षु के द्वारा, शास्त्र चक्षु के द्वारा इस संसार को देखना है, चर्म चक्षु नहीं। बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन उसके अंदर छुपे हुए मृत्यु को नहीं देख सकती मछली। तो इसलिए पश्यन्नपि पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देखती, सब कुछ दिखता है लेकिन फिर भी नहीं दिखता, ये दुख है। इस संसार के हर सुख के पीछे दुख है। तो जो चारा है वो उसको, मछली को दुख देने का ही एक प्रोसेस, अल्टीमेटली प्रोसेस का जो जो गोल है वो मछली को कष्ट देना है कि नहीं। लेकिन इन द प्रोसेस देर इज सम प्लेजर, वो क्या है, चारा, थोड़ा सा होगी, उतना ही जिससे कि मछली फंस जाए। उसी तरह से एक और एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जेल में जब कोई कैदी पकड़ा जाता है तो तो उसको सरकार फ्री में खाना खिलाती है कि नहीं? जो भी खिलाए फ्री में ही खिलाना पड़ता है, कपड़ा खाना सब वस्त्र देते हैं। तो क्या मतलब फ्री में सरकार खाना खिला रही, तो सरकार को इतना प्रेम है उससे, क्यों खाना इतना? 20 साल रहेगा, 20 साल खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको 20 साल पिटाई करना है, सजा है 20 साल पिटाई करने का। और 20 साल अगर पिटाई करना है तो उसको 20 साल जीवित रखना पड़ेगा, इसलिए 20 साल खाना खिलाना पड़ता है। ये खाना नहीं खिलाएंगे तो 5 दिन मर जाएगा, अब पीटना है 20 साल, है कि नहीं? तो इसलिए खाना खिलाना, उसको 20 साल पीटने के लिए खाना खिलाना जरूरी है, इसलिए खाना खिलाया जाता है। लेकिन लोग इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। कैदी तो समझ लेते, हम नहीं समझते। उसी तरह से हम सब इस संसार में कैदी ही हैं, और माया जो है वो हमें थोड़े बहुत सुख देती है ना, नहीं तो ह्यूमन राइट्स के लिए क्लेम कर देंगे हम, है कि नहीं? तो कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए सुख है इस संसार में। वास्तव में अन्यथा इस संसार को तो दुखालय ही बनाया गया है। इसलिए जो बुद्धिमान है, इस बात को जानते हैं, फिर ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे। दुर्लभ मानव जन्म है जो प्राप्त हुआ है, इसमें कृष्ण का भजन नहीं किया मैं, ये दुख है, ये भी एक दुख है, ये भी एक दुख है। किसको सुनाऊं मैं ये दुख? जीवन दिन जाए मीछे काजे, निसिद्रा बोसी नहीं जाए निकटे, भावी आसी बोसी, बगल में आके मृत्यु बैठ गई, पता ही नहीं चला कब आके बैठ जाएगी। दिन चला गया व्यर्थ के कार्य में, और निद्रा में रात बीत गई। इस प्रकार से जो है वो दिन और रात बीतता चला जाता है, नाना प्रकार के कष्ट दुख मिलते हैं संसार में जीव को। तो ये जो शरीर है ये सुखों का घर नहीं है, ये दुखों का घर है। शरीर को दुख देने के लिए बनाया गया इसे। तो इन एसेंस संसार को दुखालय बनाया गया है। कोई सुख ढूंढ रहा है तो वो मूर्ख आदमी है। इस संसार में अगर कोई सुख ढूंढ रहा है, दुख मिलने पे अगर आश्चर्य हो रहा है, तो वो आदमी मूर्ख है। लेकिन जो समझ गया कि सुख मिलने पे जिसको आश्चर्य होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है? तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान दुख दिए क्यों, दुख बनाए क्यों? पहले डाउट क्लियर होना चाहिए कि सुख है नहीं, दुख ही है। अब दुख क्यों बनाया भगवान? दुख इसलिए बनाया क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें। अगर आपको जेल में फर्स्ट क्लास व्यवस्था मिल जाए तो कोई रहेगा बाहर? रहेगा, सब जेल में चले जाएंगे। जेल में ही मान लीजिए विवाह का व्यवस्था हो जाए, पत्नी की व्यवस्था हो जाए, बच्चे की व्यवस्था हो जाए, जेल में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाए फर्स्ट क्लास का, जो कि कभी छूटे नहीं, रिसेशन ना आए, है कि नहीं, लैपटॉप मिल जाए, है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन के साथ, 4G नेटवर्क, व्हाट्सएप सब मिल जाए, है कि नहीं, है? जेल के अंदर आपको बार और शराब पीने का व्यवस्था हो जाए, मांस खाने की व्यवस्था हो जाए, तो क्या कोई बाहर रहेगा? इसलिए भगवान ने जेल में, ये संसार जेल है उन लोगों के लिए है जो भगवान को शरण समर्पण नहीं करना चाहते, उनके लिए संसार बनाया है मैंने, भगवान ने कहा, जो मेरी शरण में नहीं आएंगे ऐसे मूर्खों को इधर डालता हूँ, जो मेरी शरण में आएंगे फिर उनको मैं यहाँ नहीं रखता, तेसाम तेसाम अनुकंपार्थमेव, तेसाम एव अनुकंपार्थम मृत्यु संसार सागरा। बहुत जल्दी मैं उसको इस संसार से बाहर ले जाता हूँ, अपने धाम में पहुँचा देता हूँ, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगता है उसको यहाँ नहीं रहने का, उसको मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए। यहाँ तो उन लोगों के लिए है जो मूर्ख हैं, ऐसे लोगों के लिए संसार है, इसलिए दुख है। तो भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ ज्यादा दिन तक रहें, इसलिए भक्तों को भी दुख देते हैं, ये भी समझना है कि भक्त लोग सोचते हैं प्रभु हमें क्यों दुख, हमें क्यों दुख, कि हम भक्त में ज्यादा अंतर नहीं है, हम भी भगवान की भक्ति कई बार, कई अगर ध्यान से देखें तो हम लोग जैसे राजा जीवनाश्व हैं, ये गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल चले गए, क्यों? ये दुख था। और जैसे अभी देखिए वहां भी जाके दुखी हैं जंगल में, ब्रह्मभूत परेशान आत्मा, सदा सोचती सदा कांसती, है कि नहीं, भूत पकड़ लेता है ना, ब्रह्मभूत, एक ब्रह्मभूत होता है, ब्रह्म राक्षस को कहते हैं, बहुत खतरनाक होता है, उसे जो परेशान आत्मा होती है वो हमेशा सोचती रहती है, हमेशा मतलब भले संसार को त्याग कर जंगल में चला जाए, मंदिर चला जाए, मंदिर ज्वाइन कर ले, लेकिन वो परेशान आत्मा, प्रसन्न आत्मा तो भगवान ने कहा है, परेशान आत्मा होती है वो क्या करेगी, हमेशा चिंतित रहेगा। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी बड़े चिंतित रहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के बाद, कहाँ आ गया मैं, भगवान को बड़ा दुख होता है उनके चेहरे को देखकर, बहुत दुखी हो गया, फंसा दिया मैंने इसको लगता है। इसलिए ज्यादा दिन अगर दुखी रहता है तो फिर भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, मुक्ति हर व्यक्ति को चाहिए इंक्लूडिंग ब्रह्मचारी से, इसलिए भगवान मुक्ति देते हैं, है ना, मुक्ति दे देंगे, बहुत दुख हो रहा है तुमको, बहुत दुख हो रहा है, मुक्त कर देता हूँ तुमको, तो पुनः चला जाता है। भगवान नहीं चाहते जबरदस्ती किसी को रखना है ना, भगवान नहीं चाहते किसी को कि बेचारा मुंह फुला कर रहे मंदिर में। इसलिए मंदिर में ज्यादा दिन तक वही रह सकता है जो प्रसन्न रहे भगवान की शरण में। स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, हे स्वामी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान पूछेंगे बोलो क्या चाहिए, ध्रुव महाराज से पूछे ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको पाकर सब प्राप्त हो गया, और क्या चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और आप मुझे हीरा मिल गए। अब हीरा मिलने के बाद कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों भागूंगा मैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी का भाव ये होना चाहिए, स्वामी कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे, क्या अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जान, स्वर्ग नाही मागी आर मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कुनु विभूतिर लागी। यहाँ तक विभूति भी नहीं चाहिए, विभूति कौन नहीं चाहता है कि नहीं। ऐसे उंगली घुमाऊं और इधर मर जाए लोग, उधर उंगली घुमाऊं उधर सब मर जाए, विभूति है ये। प्रभु जी इतने दिन माला किया कोई भी सिद्धि नहीं आई अभी तक, अरे कम से कम एक लाइफ मेंबर इंप्रेस हो जाए मेरे से, इतना सिद्धि तो हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। इतना सिद्धि हो जाए कि लोगों को मैं भक्त बना सकूं, जिसको चाहूं बोल दूं एक बार एक्सेप्ट कर ले मेरी बात, है कि नहीं। और ऐसी सिद्धि आ जाए कि मैं रोड पे जाऊं तो सब मेरे पास आकर बोले प्रभु एक गीता दे दीजिए, क्या फायदा हरे कृष्णा करने का। ये भी कुछ लोगों का भाव होता है, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई चमत्कार नहीं कर पा रहा हूं मैं, छोटे छोटे सड़क छाप साधु जोगी चमत्कार कर देते हैं, हम लोग इतना माला करे जा रहे कले जा रहे, कोई चमत्कार नहीं है। ये भी होता है सिद्धि विभूति, ठीक है ना, विभूति चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त जो है उनको ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए, विषये जे प्रीति हवे आछये आमार, सेइ मत प्रीति हौक चरणे तुमार। आज मेरा जितना अटैचमेंट मटेरियल चीजों के प्रति है वही अटैचमेंट आपके चरणों में हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो देखिए राजा जुवनास को दुख हुआ और सोचे कि कोई फायदा नहीं है, अब चलो छोड़ देते हैं सब संसार, क्या एक पुत्र नहीं हुआ क्या रखा है इस संसार में, कोई फायदा नहीं है, और जंगल में गए। लेकिन उनकी इच्छा जो है, संसार तो छोड़ दिए लेकिन इच्छा नहीं छोड़ पाए, इच्छा को साथ में लेके गए जंगल, है कि नहीं। किसकी इच्छा, पुत्र प्राप्त करने की इच्छा, और इसके कारण क्या हुआ कि 100 पत्नी के साथ जंगल गए, क्योंकि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय तो पत्नियों के साथ जाएगा ना, वानप्रस्थ जाएंगे, संन्यास तो लेते नहीं क्षत्रिय, इसलिए पत्नी के साथ जंगल गए। पूरा महाभारत भी इसी पे आधारित है, महाभारत अगर पढ़ेंगे तो महाभारत भी बिल्कुल यही बताता है, धृतराष्ट्र की कहानी है पूरी महाभारत, और महाभारत के अंत में धृतराष्ट्र का ही वर्णन है, वहाँ भारत का निष्कर्ष भी यही है धृतराष्ट्र, कि धृतराष्ट्र जो है वो महल छोड़कर चले गए, जंगल में गए, और वहाँ पर जाने के बाद एक दिन उनके आश्रम में व्यास जी आए। व्यास जी ने उनसे प्रश्न पूछा कि हे राजन, अब तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपके सारे पुत्र मारे गए, और अब आपने अपना राज्य सब कुछ चला गया आपके हाथ से, अब आ गए आप जंगल में आ गए, अब तो आपके पुत्रों के प्रति आपका मोह नष्ट हो ही गया होगा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उस बात को अभी भी भुला नहीं पा रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मेरे पुत्रों के साथ अन्याय हुआ है। धृतराष्ट्र महाभारत के अंतिम जो कुछ अध्याय हैं उसमें यही वर्णन किया गया है। व्यास जी फिर उनको आकर आत्मज्ञान देते हैं वन में आकर धृतराष्ट्र को, जिससे कि उनका मोह नष्ट होता है, उसके बाद वो योग अग्नि में अपने को भस्म करते हैं। तो ये मोह जो है, हैं, इसलिए भगवान गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, नष्ट मोहो, हैं, क्या हुआ गीता सुनने से, नष्ट मोहो। गीता पढ़ लिए कितनी बार लेकिन मोह नष्ट नहीं हुआ, हैं, पढ़ भी लिए बांट भी दिए, मोह नष्ट नहीं हुआ। नष्ट मोहो स्मृतिर लब्ध्वा, क्योंकि जब तक मोह नष्ट नहीं होगा तब तक स्मृति नहीं आएगी। कौन सी स्मृति, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, भूलते रहेंगे भूलते रहेंगे। चाहे हजारों बार प्रवचन सुने, किताब पढ़ें, कुछ भी करें, भूलते रहेंगे। क्यों, ये मोह के कारण। ये मोह जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक ही होगा। इसलिए नष्ट मोह हो, उसके बाद स्मृतिर लब्ध्वा, क्या स्मृति आया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका स्मृति। क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन भूल गए कि उनको युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी स्मृति चली गई। पहले तो क्लियर था, क्लियर था, लेकिन जैसे ही देखा भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेषां पृथ्वीं महीक्षिताम, सबको जैसे ही देखे क्या आ गया, मोह आ गया, और मोह के कारण ज्ञान नष्ट हो गया, स्मृति चली गई। स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो, स्मृति क्या चली गई, विस्मृति मतलब जो लेक्चर में सुना, जो क्लास में सुना, जो किताब में पढ़ा, उसका स्मरण ही नहीं रहेगा, स्मरण ही नहीं रहेगा, भूल जाएगा व्यक्ति मोह के कारण। इसलिए मोह नष्ट होगा तो स्मृति वापस आएगी, और स्मृति ये दोनों होगा किसके कारण, कृष्ण की कृपा के कारण, तत्प्रसादात में अच्युत। तो मोह को नष्ट नहीं हुआ, देखिए राजा जोनास्व का मोह नष्ट नहीं हुआ, और पत्नियां जो हैं वो जोनास्व थे, पत्नियों के साथ गए जंगल में जाने के बाद भी खिन्न थे। जो कई बार होते भक्ति में जुड़ने के बाद भी व्यक्ति क्या होता है, खिन्न होता है, दुखी होता है, है? राजवनस तो कम दुखी होंगे, लेकिन लगता है यहाँ इससे कि पत्नियां ज्यादा दुखी थी, खिन्न थी, तो इसलिए वहां पे भी जाकर उनके दुखी रहते थे। तो ऋषि मुनि जो हैं वो पूछ रहे हैं उनसे, हे राजन अब आप दुखी क्यों हैं, अब तो आप जंगल में आ गए। लेकिन कहीं कोई अगर भक्ति में जुड़ जाता है या ब्रह्मचारी मंदिर में आ जाता है, दुखी रहता है, तो कई बार पूछते हैं न, वहाँ के पहले के सुखी लोग पूछते हैं उनसे कि दुखी क्यों है, तो बताता है बेटा नहीं हुआ। लेकिन ऋषियों ने पूछा कि अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपने सब कुछ त्याग कर आ गए, अब दुख का क्या कारण है, तो बोले बेटा नहीं हुआ, अभी वो बात भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऋषियों को बताया होगा वही है कारण, और क्या, बेटा नहीं है। तो ऋषियों ने बोला ठीक है, आप ऐसा करो आपको बेटा का व्यवस्था करते हैं, इसलिए देखिए ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जंगल के ऋषि राजा पर अत्यंत दयालु थे, अतः वे मनोयोग पूर्वक हीन यज्ञ करने लगे जिससे राजा को पुत्र उत्पन्न हो सके। क्योंकि भाई जब तक इच्छा बची रहेगी तब तक व्यक्ति जंगल में जाके चैन से भजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऋषि मुनि कह लिए चलो जो भी एक दो इच्छा है इसका भी पूरा कर ही देते हैं, ताकि कम से कम मन परेशान आत्मा से शांत आत्मा हो जाएगा, प्रसन्न आत्मा। जो प्रसन्न आत्मा, नहीं तो न सोचती न कांसती, सदा सोचती सदा कांसती तो क्या होगा, उसका अटक जाएगा ना, अटक जाता है कई बार, है ना। जैसे गांव में अगर ट्रैक्टर से खेती करने जाते हैं तो कई बार कीचड़ होता तो ट्रैक्टर अटक जाता है ना। जो गांव में खेत में ट्रैक्टर देखे होंगे वो जानते हैं, ट्रैक्टर अटक जाए और अगर अटक जाए जितना ज़्यादा आप एक्सेलरेटर दबाओगे उतना ज़्यादा धंसता जाएगा अगर अटक गया तो, है कि नहीं। उसी तरह से एक बार जो अटक जाएगा और जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे आप उसको, वो व्यक्ति और ज़्यादा अटकता जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए उसको प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा किसी तरह से, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको देना पड़ता है। इसलिए भगवान भी कई बार भक्तों की इच्छाओं को, लेकिन ये बहुत उच्च कोटि का भक्ति नहीं है, ये कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मल नाम सताम। तो कैतव धर्म के अंतर्गत आता है अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों का क्या है, कैतव धर्म, चीटिंग रिलीजियन। हालांकि भगवान ने इनको अप्रिशिएट किया है कि ये चार प्रकार के सुकृति जना है, लेकिन ये चारों क्या है, ये भी कैतव धर्म ही है, इससे भी ऊपर उठना है। क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सब एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्न करने की इच्छा, अपने सुख की भावना नहीं, अपने आनंद के लिए प्रयास नहीं, मेरे को सुख मिले इससे ऊपर उठना, ये शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव, ये उत्तमा भक्ति है। मेरे को दुख मिलता है सुख मिलता है उसका, उससे कोई उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व यह है कि कृष्ण को क्या मिलता है, कृष्ण को दुख मिलता है या कृष्ण को सुख मिलता है, उसका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर राजा जीवनाश्व और उनकी पत्नी अपने 100 पत्नियों के साथ जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाने के बाद भी वो खिन्न रहते हैं, है ना। इसलिए जो भक्त भौतिक संसार के दुखों से सताए हुए होने के कारण भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। है? क्यों? क्योंकि भक्ति के दौरान वो इच्छाएं बार बार उनके हृदय में फिर से प्रकट होंगी। अशेष कामना हृदय माझे मोर, हृदय में उमड़ेगी वह कामनाएं, और फिर क्या होगा, वो कामनाएं जो हैं हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति करने से रोकेंगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। और इस विशेष तौर पे, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर जो भक्त हैं वो इसी इन्हीं के कारण भक्ति में जुड़ते हैं, कोई बहुत कम ही होता है जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जुड़ता है। कुछ कष्ट हो गया, कुछ दुख हो गया, तो वो जो इच्छाएं हैं वो केवल दबी हुई रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं, दब जाती हैं, और वो सही समय आने पर वो अंकुरित होती हैं। सही समय आएगा तो वो अंकुरित होंगी, इसलिए उसके बीज को भस्म करना है। के चित्तु केवलया भक्त्या, केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही उसको जलाया जा सकता है, शुद्ध भक्ति के द्वारा उसको जलाना है। शुद्ध भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पाद सेवनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम अर्चनम। ये भक्ति की जो विधियां हैं, 9 विधियां, इसका पालन करने से साधु संघ के द्वारा, विशेष तौर पे साधु संघ में शुद्ध भक्ति के तत्व को समझने के द्वारा, समझने से, ज्ञान प्राप्त करने से, शुद्ध भक्ति के तत्व को समझने से हैं ये जो है, और उस तत्व को समझने के बाद भक्ति के विधियों का पालन करने से ये जो इच्छाओं का जो बीज है वो नष्ट हो जाएगा और तब जाके शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकट होगा। तो ये सावधान रहना चाहिए हम सबको, क्योंकि हम सब साधक हैं, तो साधक की अवस्था में हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अभी हमारे हृदय में कई सारी इच्छाएं बीज के रूप में स्थित हैं। और जैसे ही बीज क्या होता है, जैसे ही एक सही वातावरण मिलेगा, हवा पानी, तो फिर से पनप जाएगा। इसलिए देखिए बरसात के दिनों में जैसे ही बारिश होती है, हर जगह घास उग जाता है। अरे घास कहाँ से उगा, हमने तो बीज डाला नहीं, क्योंकि बीज पहले से होता है हर जगह, दिखता नहीं है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि भक्ति में जुड़ने के बाद ये बीज फिर से उगने लगते हैं, उगने लगते हैं, और वो बीज जब उगने लगते हैं तो भक्ति लता को ही क्या करते हैं, ढक देते हैं, भक्ति की लता को ही रोक देंगे उसका प्रगति को, और हावी हो जाएंगे हमारी भक्ति के ऊपर कुछ समय के बाद। इसलिए जो सावधान साधक है वो गुरु के मार्गदर्शन, एक एक्सपर्ट गाइड के मार्गदर्शन में पहले तो सीखता है इन उपशाखाओं को, जैसे ही पनपती हैं उनको तुरंत उखाड़कर फेंक देता है। एक एक्सपर्ट गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु या वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में रहते हुए उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तुरंत उसको उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हमारी भक्ति की लता को ही के जो ग्रोथ है उसको रोक देंगी। तो इसलिए बहुत सावधान रहना है। और फिर क्या होगा, बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन तवो तन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए गुरु का रोल कितना महत्वपूर्ण है। गुरु मार्गदर्शक है। एक भक्त ने इसलिए प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं वो अपने सुख के भावना से आ रही है या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आ रही है। जो मैं इच्छा करता हूँ, जो मैं कार्य कर रहा हूँ अपने सुख के लिए कर रहा हूँ कि कृष्ण के सुख के लिए कर रहा हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको नहीं पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा। ये गुरु का रोल है, गुरु का ये रोल है। इसलिए गुरु जानते हैं, इसलिए गुरु के स्थिति को शास्त्रों ने इतना वर्णन किया है, गुणगान किया है गुरु के। इसलिए कभी वही एकमात्र हैं जो हमें बताते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके चरणों को पकड़ लेना है, उन्हीं के द्वारा इन समस्याओं से हम मुक्त होकर सुख भक्ति तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?
कृष्णा, जब हम इधर भागवतम क्लास में बैठते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भक्तों का संग। और फिर हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वहाँ भी हम आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं अपने बिजनेस में, और इधर क्लास में आते हैं तो इधर भी हम सोचते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ा जाए। तो दोनों के बीच में ना एक प्रतिस्पर्धा सी बनी रहती है कि बिजनेस में आगे बढ़ना है नहीं भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इस स्थिति में न तो हम भौतिक सुख प्राप्त कर पाते और न ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर पाते, तो इस चीज़ को हम कैसे करें?
क्या करना है आपको? जिसको करना हो तो कर ही रहा है, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए जिसको जो करना है वो अपना अपना काम कर रहा है आपके ऊपर, माया अपना काम कर रही है आपके ऊपर और भक्त भी अपना काम कर रहे हैं आपके ऊपर। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी तरफ झुकना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने दो पार्टी बनाया है, बीजेपी और कांग्रेस, है कि नहीं। एक तो भक्तों की पार्टी है और एक माया की पार्टी है, दोनों को भगवान ने ही बनाया है। भक्तों की पार्टी में क्या किया जाता है, पढ़ाई किया जाता है, और माया की पार्टी क्या करती है, परीक्षा लेती है, समझ रहे। तो यहाँ क्लास हो गया और बाहर जाके क्या होता है, एग्जाम होता है। बिना एग्जाम के डिग्री कैसे मिलेगा, हैं? तो एग्जामिनेशन बोर्ड भी तो होना चाहिए ना। तो वही है, ऑफिस में आपको एग्जाम होता है, घबराइए मत, हैं? उसमें पास उत्तर एक ही है, सारे प्रश्न का एक ही उत्तर है। क्या भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि कबे हबे हे नो दशा मोर छत्याजी जड़ आशा विविध बंधन छड़िबो संसार घोर। हे भगवान हरि, मेरा वो दशा कब होगा कि त्यजी जड़ आशा विविध बंधन छाड़ी वो संसार को, कि जड़ की आशाओं को त्याग दूंगा, विभिन्न प्रकार के बंधनों को काट दूंगा और इस घोर संसार को छोड़ दूंगा। वो दिन मेरा कब होगा, कब वो दिन होगा, यही उत्तर है, यही प्रार्थना। ये प्रार्थना करना चाहिए हर परिस्थिति में कि मैं ऐसी परिस्थिति में फंस गया हूँ हे प्रभु, हैं? और इससे बाहर आप ही निकालिए मुझे, कब वो दिन आएगा मेरा, कब वो दिन आएगा। इस प्रकार की जो प्रार्थना है ये आप, है ना, सहायता करती है, प्रदान करती है। लेकिन ये प्रार्थना आएगी जब व्यक्ति भोग और ईश्वरीय की इच्छाओं से मुक्त होगा। और भोग और ईश्वरीय की इच्छा कैसे जाएगी, है उसे क्लास अटेंड करना पड़ेगा। परीक्षा में पास कौन होगा, पढ़ाई करेगा जो, है कि नहीं। तो एक बार फेल हो कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्री एग्जाम की व्यवस्था है, बार बार एग्जाम होता रहेगा, बार बार, इसको घबराना नहीं है, बार बार अवसर मिलेगा। इसलिए पढ़ाई करना मत छोड़िए, क्लास में आते रहिए, सुनते रहिए, यही साधु संघ के द्वारा धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। माया से घृणा नहीं करना है, लेकिन माया से सावधान जरूर रहना है, क्योंकि परीक्षा लेती है माया, है ना। हम कितने सिंसियर हैं इसकी परीक्षा लेती है माया। और कोई प्रश्न है, आई थिंक टाइम इज ओवर, वी शुड स्टॉप। थैंक यू, हरे कृष्ण।